और एक बहुत गुप्त और रहस्य की बात सुनाता हूं नारद, प्राय लोगों को पता नहीं है। लोग तो यही जानते हैं कि परशुराम जी महाराज है, ये भगवान के कला अवतार है, पर इसका रहस्य किसी को भी पता नहीं। आज मैं तुम्हारे सामने रहस्य खोलता हूं। नारद जी ने कहा, महाराज बड़ी कृपा हो गई कि देखो परशुराम जी थे ना, ये जमदग्नि के बेटा थे, और जो है सहस्रार्जुन को मारने की इच्छा से वो धनुष विद्या को प्राप्त करने के लिए शंकर जी के पास आए कि महाराज आपका पाशुपतास्त्र है, उसका ज्ञान दे दो। पाशुपतास्त्र के सामने फिर और कोई अस्त्र नहीं है, सबसे ऊंचा वो जो है बाण है, उसको लेने के लिए आए। तो भगवान शंकर उस समय बड़े गदगद होकर के पार्वती को अध्यात्म रामायण सुना रहे थे। जब अध्यात्म रामायण सुनाए तो वो भी वहां पर बैठ गए, और जो पूरी रामायण उन्होंने सुनी, सुनते ही परशुराम जी महाराज वहां पर भगवान की कला बन गए। लोग तो कहते हैं कि वो भगवान की कला होकर आए, कि नहीं, अध्यात्म रामायण सुनने से उनमें भगवान की कला प्रकट हुई है, तब से वे भगवत कला नारायण कला कहलाने लगे। श्रुत्वा गृहीत्वा सु पठनात् नारायण कला मगात्, नारायण कला को प्राप्त हो गए, तब वो जो है परशुराम जी की महिमा हुई है। इसलिए राम गीता का एक महीने तक कोई व्यक्ति पाठ करता है, सारे पाप उसके धुल जाते हैं। शालिग्राम भगवान के सामने, तुलसी और पीपल के सामने, और अच्छे संत महापुरुष हो उनके सामने जो राम गीता पढ़ता है, उसकी महिमा को हम कभी अपने चार मुखों से नहीं कह सकते। ब्रह्मा जी बोलते हैं, राम गीता का जो भक्ति पूर्वक पाठ करता है श्राद्ध के दिनों में, और फिर उसके बाद पितरों को प्रसन्न करने के लिए ब्राह्मणों को भोजन कराता है, तो उस राम गीता सुनने वाले के इतने पुण्य उदित होते हैं कि उसके प्रभाव से उसके पितर हैं वो पितर तर जाते हैं और उसको आशीर्वाद देते हैं कि भाई तुमने राम गीता सुनकर के ब्राह्मणों को भोजन कराया, हमको तुमने विष्णु लोक में भेज दिया। एकादशी को निराहार रहे और द्वादशी के दिन अगस्त वृक्ष के नीचे बैठ करके जो राम गीता का पाठ करता है वो साक्षात भगवान का ही स्वरूप माना जाता है। राम गीता को पढ़ लिया, उसको कोई फिर नए दान की पुण्य की तीर्थों में जाने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। सारी श्रुतियों का, स्मृतियों का, पुराणों का, इतिहासों का, इन सब का सार यदि देखा जाए तो अध्यात्म रामायण है। अध्यात्म राम चरितस्य मुनीश्वराय महात्म्यमेत दुदितं कमलासनेन ये श्रद्धया पठति वा श्रुणुयात् समर्त्यः प्राप्नोति विष्णु पदवीं स्वरपूज्यमान है। ऐसे अध्यात्म रामायण का जो है ये कथन मुनीश्वर यो नारद जी को ब्रह्मा जी ने सुनाया था, इसको जो सुन लेते हैं उनके मन में अध्यात्म रामायण का भाव बैठ जाता है। यह तो अभी अध्यात्म रामायण की महिमा सुनाई है, ब्रह्मांड पुराण के अनुसार जो आई वैसा सुनाया है। अब अध्यात्म रामायण का शुभारंभ करते हैं। यह पृथ्वी भरवारणाय दिवजहि संप्रार्थितश्चिन्मयः संजात पृथ्वी तले रविकुले माया मनुष्यो व्ययः निश्चक्रम अत राक्षसः पुनरगात् ब्रह्मत्वमाद्यं स्थिराम् कीर्तिं पापहरां विधाय जगतां तं जानकीशं भजे। जानकी पति भगवान श्री राम को हम प्रणाम करते हैं। कैसे हैं वे? कि देवताओं ने पृथ्वी का भार हल्का करने के लिए जिनसे खूब प्रार्थना की थी और देवताओं की प्रार्थना सुनकर के ज्ञान स्वरूप परब्रह्म परमात्मा सूर्य कुल में अवतार लिए, पृथ्वी पर आए, माया से मनुष्य बने, उन्होंने राक्षसों से इस पृथ्वी को मुक्त करवाया, अपनी पुण्य कीर्ति को पृथ्वी पर स्थिर किया और अंत में सब लीला समेट करके और वापिस वे ब्रह्म भाव को प्राप्त हो गए। ऐसे भगवान जानकी पति को हम प्रणाम करते हैं। वे भगवान सीतापति भगवान विश्व के उत्पत्ति स्थिति और प्रलय तीनों में जो महान कारण है। देखो, संसार की उत्पत्ति भगवान से होती है, संसार का पालन भगवान से होता है और काल चक्र के द्वारा भगवान इस सृष्टि को अपने में समेटते रहते हैं, अपने से ही पैदा करते हैं, अपने में ही समेटते हैं। जो स्वयं माया रहित है लेकिन संसार की उत्पत्ति पालन और संहार माया के द्वारा करते हैं, ऐसे ज्ञान स्वरूप भगवान सीतापति को मैं प्रणाम करता हूं, जो अपने तत्व को खूब अच्छी तरह से समझने वाले हैं, जो अनन्य भाव से अध्यात्म रामायण को सुनते हैं, उनका अंतिम अंतिम स्वरूप वे भगवान के लोक में जाते हैं। हरिम एव यान्ति ते। अध्यात्म रामायण को जो व्यक्ति नित्य प्रति सुनते हैं, वे हजारों हजारों करोड़ों करोड़ों गौदान का पुण्य प्राप्त करते हैं। भगवान शंकर रूपी पर्वत से ये राम कथा रूपी गंगा जी निकली है और भगवान श्री राम रूपी समुद्र में जाकर मिलती है और इसका रास्ता है त्रिभुवन, भूलोक भूवरलोक और स्वर्ग लोक तक ये राम कथा घूमती रहती है। एक बार की बात है, कैलाश पर्वत के ऊपर भगवान शंकर विराजमान थे। कैलाशग्रे कदाचित द्रविशत विमले। कैलाश पर्वत भी कैसा कि जहां सैकड़ों सैकड़ों सूर्य है वो चमक रहे हैं, ऐसे कैलाश पर्वत की शोभा, इतना कैलाश पर्वत सफेद। और उस कैलाश पर्वत के अंदर ही एक महल सा बना हुआ, रत्नों से जड़ित जहां खंबे हैं, उनके अंदर भगवान ध्याननिष्ठ होकर विराजमान, भगवान शंकर बड़े ध्यान में विराजमान। और भगवान ने आज तीसरा नेत्र खोल रखा है, बड़े बड़े सिद्ध लोग उनके चारों तरफ बैठे हुए उनकी कृपा को लूट रहे हो, मानो ऐसी कृपा में स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं। वहां उनके बाईं ओर देखिए, झांकी को देखिएगा, ऐसा कैसा वर्णन था, उनके बाईं ओर देवी पार्वती भक्ति से बड़े नम्र भाव से हाथ जोड़ी हुई अपने आराध्य संपूर्ण जगत के मैल को दूर करने वाले भगवान शंकर उनको प्रणाम करती हुई प्रार्थना करते हुए बोलती है, निवेदन करती है, नमोस्तुते देव जगन निवास सर्वात्म दृक्त्वं परमेश्वरोसि पृच्छामि तत्त्वं पुरुषोत्तमस्य सनातनं त्वं च सनातनोसि। हे देवादि देव, हे जगन निवास, हे सर्वात्म दृक्, हे परब्रह्म परमात्मन परमेश्वर, मैं आपसे पुरुषोत्तम तत्व के विषय में, सनातन तत्व के विषय में पूछना चाहती हूं। भगवान पुरुषोत्तम का जो सनातन तत्व है उसके विषय में आपसे पूछने के लिए प्रार्थना करती हूं, क्योंकि आप स्वयं सनातन हो, इसलिए सनातन तत्व की व्याख्या आप ही बता सकते हो। ये सनातन तत्व क्या है? देखो, ये यही प्रश्न था पार्वती का। अभी पार्वती ने न राम जी के विषय में पूछा है और न कोई और, निर्गुण निराकार सगुण साकार कुछ नहीं, सनातन तत्व, सनातन तत्व माने सदा रहने वाला तत्व क्या है, बस इतना सा प्रश्न किया है। और कहा कि महाराज मैं एक स्त्री हूं, ज्यादा समझती नहीं हूं, लेकिन इतना मैं जानती हूं कि आप भक्तों पर कृपा करने वाले हो और मेरे पास कोई विशेष भक्ति तो है नहीं, पर मैं आपको चाहती हूं, इससे ज्यादा मेरे पास कोई भक्ति है भी नहीं। देखो ये जीव जब भगवान को चाहने लगता है ना, ये सबसे ऊंची भक्ति होती है। अपने तो देखते हैं कि भाई इतना भजन करें, इतना पुण्य करें, इतना दान करें, इतना ये करें, तब जाकर भक्ति होती है, ऐसे नहीं होती। सबसे ऊंची भक्ति होती है भीतर से हमारी जो चाहना हो वो भगवान के विषय की चाहना हो, ये सबसे ऊंची भक्ति है। उसने कहा प्रियोसि मे त्वम, आप मेरे प्रिय हो, मुझे अच्छे लगते हो, आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो। प्रियोसि मे त्वम वदयत्तु पृष्ठम, इसलिए मैं आपसे बात पूछती हूं। अब उसमें यदि ज्ञान की बात आती हो, विज्ञान की बात आती हो, वैराग्य की बात आती हो, भक्ति की बात आती हो, तो आती तो कोई आनंद ही जी, क्योंकि उस ज्ञान भक्ति वैराग्य के साथ में तत्व को समझाएंगे, उससे तो हमारा कल्याण ही तो होगा। इसलिए आपको बड़े निसंकोच होकर हमको बताइए, ज्यादा तो मैं कुछ जानती नहीं हूं। एक बार कभी कभी मैं घूमती फिरती कभी बात सुनती हूं कि भगवान श्री रामचंद्र में भक्ति होनी चाहिए, ऐसा हम सुनती है। तो उसको सुनने से हमने ये लोगों से ये भी सुना है कि अखिल लोक सार भगवान रामचंद्र है, उनके अंदर यदि हमारी दृढ़ भक्ति हो जाए तो वो भक्ति ही नौका बन जाया करती है, ऐसी हमने कोई बात सुनी है। तो आप हमारे हृदय का संदेह दूर कीजिए, क्या तत्व क्या है, और वास्तव में क्या राम जी की भक्ति से मनुष्य का कल्याण हो जाता है। अब मेरे संदेह दो बातों का हो रहा है। लोग कहते हैं राम ही तत्व है, राम ही सनातन है, राम ही निर्गुण निराकार सच्चिदानंद घन है, ऐसी बात हमने सुनी, वो माया से अतीत है, वो सत्वगुण रजोगुण तमोगुण तीनों गुणों से कभी प्रभावित नहीं होते हैं, वो बड़े दिव्य हैं, ऐसी ऐसी बातें हमने सुनी। और ये भी सुना है कि अच्छे अच्छे महापुरुष उनकी हरदम भक्ति करते रहते हैं। और महाराज आपको भी कई बार देखती हूं, एकदम जब कभी राम का नाम लिया जाता है, राम के स्वरूप का कुछ वर्णन चलता है, तो आप भी बोलते बोलते एकदम चुप हो जाते हो। तो आज कुछ बोलने की मैं हिम्मत कर रही हूं कि राम जी है क्या चीज। यदि राम जी सब कुछ है, सब जानने वाले हैं और आनंद स्वरूप है, तो महाराज हमने सुना कि वो सीता जी के लिए बड़ा विलाप किए थे, तो आनंद स्वरूप में रोना कैसे होता है। यदि इसमें जानाति कुतो विलाप है, यदि राम जी सब कुछ जानते हैं तो सीता के लिए विलाप क्यों किया। और यदि राम जी जानते नहीं है तो फिर आप लोग उनका भजन क्यों करते हो। बड़े बड़े ज्ञानी महापुरुष और आपसे तो बड़ा कौन होगा, आप भी उनका भजन करते हो। तो आप कुछ समझ नहीं सके कि राम एक जीव है कि भगवान है। कई कई तो यहां तक बात बोलते हैं कि राम ज्ञान स्वरूप है ही नहीं, वो अपने आप को ही नहीं जानते। स्व अविद्या समृतम आत्म संयम, वो अपनी माया से अपने स्वरूप को भूले हुए हैं। और उनको जो है वशिष्ठ जी महाराज ने ज्ञान दिया तब उनको अपने आप का ज्ञान हुआ, ऐसा ऐसा लोग बोलते हैं। संबोधितो वेद परात्म तत्वम, तो हे परात्पर परब्रह्म परमात्मा स्वरूप हमारे पतिदेव भगवान शंकर, आप बताओ इसमें क्या करना चाहिए हमको। राम जी यदि साधारण जीव के समान सीता के लिए विलाप करते हैं तो हम जीव मान लेवे, लेकिन आप भी भजन करते हो तो फिर हमारे मन में संदेह होता है। और यदि हम उनको आपके समान भगवान मान लेवे तो सीता के लिए रोए और कुछ किया तो ये हमारे मन में दुख होता है, क्या करें, किधर जाए, हमारे ये संदेह हो रहा है। तो मूल प्रश्न है कि सनातन तत्व क्या है। सनातन तत्व के उत्तर में यदि आप राम को नाम राम को सामने रखोगे तो राम के जीवन में तो हम खुद ही संशयशील है कि वो सर्वज्ञ है कि अल्पज्ञ है, वो जीव है कि भगवान है। अब बताओ, अब सनातन तत्व की व्याख्या करो, देखें आप। अब देखो भगवान शंकर क्या बोलते हैं। धन्यासि भक्तासि परात्मनस्त्वम् यज्ञातुमिच्छा तव राम तत्त्वम् पुराण केनाप्यभिप्रेरितोऽहम् वक्तुम् रहस्यम् परमम् निगूढ़म् वा पार्वती वा वा वा। तुम्हारा तो अब ये प्रश्न पूछना बड़ा बड़ा सार्थक हो गया, तुम्हारा गृहस्थ सार्थक हो गया, हमारा गृहस्थ सार्थक हो गया। पति और पत्नी के बीच में यही परमार्थ की बातें होनी चाहिए। ये जो स्वार्थ की बातें होती रहती है तभी घर में कलह होता है। कितनी बढ़िया बात तुमने हमसे पूछी है। हमारे पास ये सिद्ध लोग आते रहते हैं, हमारी स्तुति कर देते हैं, चले जाते हैं, पर आज तक किसी ने अपने हृदय के अज्ञान को संशय को हमारे सामने रखा ही नहीं कि हम ये चीज नहीं जान रहे हैं, हमको ये चीज जनाओ। ये जानते ही नहीं लोग। अरे अपना संशय दूर करना चाहिए ना, तब जाकर भगवान की भक्ति होगी। न कहना भी अभी प्रेरित है, किसी ने भी मुझे प्रेरणा नहीं दी कि राम तत्व क्या है। तुमने पूछा पार्वती, बहुत धन्य हो तुम। इसलिए मैं तुमको रहस्यात्मक ढंग से इस बात को समझाता हूं। मैं बार बार तुमको धन्यवाद देता हूं कि तुमने आज राम तत्व के विषय में बोलने के लिए कहा। क्यों जी, आपको क्या धन्यवाद देवे, आप तो जानते ही थे। कह रहे हम तो जानते थे, परंतु हमारी जानकारी को सब लोगों तक पहुंचाने का काम पार्वती तुम कर रही हो, जो राम तत्व सबके हृदय में विराजमान है। अस प्रभु हृदय अछत अविकारी, पर सकल जीव जग होय दुखारी। जैसे किसी आदमी के पास में हीरा हीरा, करोड़ों रुपए का एक हीरा है हीरा, और वो आदमी उस हीरे को कुछ समझता ही नहीं है। यू उठा वो एक यू नीला नीला सा पत्थर समझ के फेंक देता है। उसी समय में एक जोहरी आकर बोलता है, अरे क्या करता है, किसको फेंक रहा है तू, ये 10 करोड़ का हीरा है, 10 करोड़ रुपए का है, 10 करोड़ का हीरा है। उसके एकदम चित्त वृत्ति बदल जाती है। ऐसे ही अपने पास अपने हृदय में भगवान विराजमान है, वो राम तत्व विराजमान है। उस राम तत्व को लोग जानते नहीं है। आज तुमने लोगों को जनाने के लिए प्रश्न कर लिया, मुझे निहाल कर दिया, बहुत अच्छा किया। वो राम है, वो राम वास्तव में परब्रह्म परमात्मा है। वो अपनी माया से संसार को बनाते हैं, और जैसे आकाश के अंदर सारा संसार है फिर भी आकाश उससे अलग का अलग है, ऐसे भगवान के अंदर अनंत ब्रह्मांड छाए हुए हैं फिर भी भगवान अलग के अलग है। सब ब्रह्मांडों में भगवान विराजमान और फिर भी भगवान उनसे अलग के अलग है। ये कितनी विचित्र बात है। देखो, है घट माही, है घट भीतर न्यारो को न्यारो, घट के अंदर भी है और अलग का अलग भी है। यही भगवान की विशेषता है। सर्वांतरस्थोपि निगूढ़ आत्मा, दारक में पावक वसे यू आत्म घटमा है। भगवान कैसे रहते हैं, जैसे लकड़ी में आग रहती है। अब हम मूर्ख लोग क्या करते हैं, लकड़ी में आग है, अब इस लकड़ी को क्या करो, इस लकड़ी को काटो काटो, चूरा बनाओ, ये करो वो करो, तो क्या करेंगे, आग है। अरे आग नहीं, इसमें यूं आग नहीं मिलती है। कि दूध में घी तो रहता ही है, चलो अब रोटी है वो दूध से ही चौपड़ लोगे साहब, घी से चौपड़ी हुई है कि दूध में घी रहता है, बोल दिया। पर अब दूध में घी कैसे रहता है, निकाल के देखा है क्या? कि निकाल के तो नहीं देखा, निकाल के देखूं। ऐसे ही लकड़ी में आग है तो इसमें आग स्वयं लकड़ी से आग पैदा करके देखो तब पता चलेगा, सुनने से पता नहीं चलेगा। सुन तो लिया कि लकड़ी में आग है, लेकिन लकड़ी से लकड़ी का यूं घर्षण नहीं किया तो इसमें से आग पैदा नहीं हुई, पैदा नहीं हुई तो कैसे पता चलेगा। ऐसे ही इस तत्व का अनुभव करना चाहिए कि हमारे अंदर आत्म तत्व क्या है, कैसे है, तब जाकर उसको राम तत्व का बोध होगा। ये तन न जानती, लोग आत्म तत्व को जानते नहीं, आते वो राम तत्व को भी नहीं जान सकते। वो राम तत्व और आत्म तत्व एक है, एक। स्व अज्ञानम अपि आत्मनि शुद्ध बुद्धे स्वरूपयन्ति, जब अपनी आत्मा को वो नहीं जानते हैं इसीलिए वो क्या करते हैं, भगवान की लीलाओं में तरह तरह का आरोप करने लगते हैं कि सर्वज्ञ है तो सीता के लिए क्यों रोए। अरे अपने ही देखो ना, अपने ही, अपनी आत्मा आनंद स्वरूप है तो हम क्यों दुख पाते हैं, हम क्यों रोते हैं। माँ मर गई रोने लग गए, पिता मर गए रोने लग गए, पति मर गए रोने लग गए, भाई मर गया रोने लग गए, पुत्र मर गया रोने लग गए। आनंद स्वरूप है, रोना क्यों आया भाई, कोई न कोई बात है। वहां हमारी अज्ञान की माया है, और भगवान सीता के लिए क्यों रोते हैं, वो ज्ञान की माया है, ज्ञान की माया। वहां रोना नहीं है, रोने को केवल दिखाया गया है। ये यहां रामायण वगैरह के अंदर जो ये दूरदर्शन पर आया, टीवी पर आई रामायण, उसमें ऐसे पात्रों को ऐसे रुलाते हैं, उनकी आंख में क्या पता क्या रासायनिक तत्व डालते हैं, ऐसे रोते उनको देख कर खुद को रोज आ जाए, देखने वाले को रोना आ जाए। अभिनय करते हैं लोग, वो वास्तव में रोते नहीं, रोने का अभिनय करते हैं। कर्ण को ऐसा कटावा बताया, केवल उसका सिर कटावा बता दिया, इतनी दूर धड़ अलग पड़ा है, सिर अलग पड़ा है, पर वास्तव में ऐसा हुआ था क्या? जिस वो शूटिंग की है, क्या उसको काट ही दिया था क्या कर्ण का सिर? पितामह भीष्म को कैसे बाणों में बताते हैं, क्या वो बाणों से ऐसा बिंधा गया था क्या? तो जब एक कैमरे की माया है, उस फिल्म की एक ऐसी तरकीब है जिस तरकीब से न होता हुआ भी वैसे बता दिया जाता है, क्या भगवान इतनी भी कला नहीं जानते क्या कि वे बतावे और रहे और बतावे और रहे और? ऐसा थोड़े ही है कि भाई भगवान नहीं जानते हो। अरे जो जीव का बंधन तुमने कहा ना कि हमारे ही समान है क्या राम, ना, भगवान अपने जानकारी रखते हुए सीता के लिए रोते हैं, और जीव अपने आप को न जान करके संसार के लिए रोता है। तो जीव का रोना और भगवान का रोना बाहर से तो एक जैसा दिखता है, पर अंदर से बहुत उल्टा होता है। इसलिए जो अपने आत्मा का ज्ञान नहीं करते, वे लोग अपने भगवान के ऊपर तरह तरह का आरोप करते हैं। निज अज्ञान राम पर धरई है, तो निज अज्ञान और धरते राम पर। अरे भाई राम सर्वज्ञ है तो हनुमान जी को क्यों भेजा बताओ? सर्वज्ञ होते हैं उनको पता ही लगा ना, हो अच्छा सीता तो वहां है। सर्वशक्तिमान है तो बंदरों को क्यों इकट्ठा किया? वह बस सर्वशक्तिमान है, वहां बैठे बैठे ही रावण को मार देते और वो सीता को उठा लाते। अरे सीता को उठा लाते ऐसे कर लेते राम, इस ये काम करने के लिए थोड़ी आए थे। भगवान ने लीला करने के लिए आए कि लोग हैं वो, हम जगह जगह जाएंगे, सीता जी की खोज करेंगे, सब जगह की पूजा करेंगे, प्रश्रवण पर्वत पर जाएंगे, लोग पंपा सरोवर का दर्शन करेंगे, लोग रामेश्वरम का दर्शन करेंगे, लोग जो है समुद्र के ऊपर बने हुए पुल का दर्शन करेंगे, लोग लंका में जाएंगे और वहां जाकर के हमारी लीला को याद करेंगे। भगवान का लक्ष्य कुछ और रहता है। इस बात को जो नहीं समझते वे लोग, साधारण आदमी ऐसी बातें सोचते हैं। स्वरूपयन्ति है निरस्त माये, माया से रहित परमात्मा में तरह तरह का आरोप करते हैं। और क्यों? क्योंकि भगवान के विषय में लोग अपने ही समान समझते हैं। पुत्रादि सकता जो बेटा बेटी में आ सकते हैं, परिवार में आ सकते हैं, और पूर्व कर्म युक्ता अनेक अनेक कर्मों में लगे हुए हैं, वे आदमी भगवान को क्या जानेंगे। इसलिए वे नित्य निरंतर संसार में आते जाते रहते हैं और व्यर्थ की बातें करते रहते हैं। अरे वे इतने मूर्ख हैं कि अपने गले में रहने वाली माला है उसको भी नहीं, अरे हमारी माला कहाँ गई थी, हमारी माला थी ये माला हमारी कहाँ गई, माला है यूं हो गई, हमारी माला गुम गई, साहब माला गुम गई, यही है क्या? हो हाँ यही है। जैसे अपने गले में रखी हुई माला मनुष्य नहीं जानता, ऐसे लोग भगवान को क्या जान पाएंगे, नहीं जान पाते। जैसे सूर्य में कभी अंधकार नहीं होता, तो रात पड़ती है तब क्या बोलते हैं कि साहब देखो अंधकार आ गया, सूर्य इस अंधकार ने सूर्य को ढक दिया, अब सूर्य का कोई बस नहीं चलता। अरे जहां सूर्य है वहां अंधकार की पहुंच है ही नहीं। कहते हैं एक बार ये अंधकार है ये ब्रह्मा जी के पास गया और कहने लगे ब्रह्मा जी ये आपका सूर्य है ना, ये मेरे को बहुत तंग करता है। क्यों क्या करता है भाई? कि बस जहां मैं रहता हूं वहां ये आ जाता है तो मेरे को मार के भगा देता है। तो ब्रह्मा जी ने सूर्य को बुलाया कि भाई ये क्या बोलता है, तुम इसको मार के भगा देते हो? कहने के पितामह हमने तो अभी तक कभी अंधकार के दर्शन ही नहीं किए, हम क्यों बैर रखेंगे, हमने तो कभी उसके दर्शन ही नहीं किए, हमको कभी मिला ही नहीं, हमारा कोई बैर नहीं, हमारा कोई झगड़ा नहीं। तो ये बोलता तो ऐसा है कि हम कैसे बोलते हैं, मैं ही नहीं समझ पाता। यथा प्रकाशो न तो विद्यते रवौ, जैसे सूर्य के अंदर कभी अंधकार रहता नहीं है, ऐसे ही परब्रह्म परमात्मा में कभी अज्ञान रहता ही नहीं है। वो तो विद्या के सागर है लेकिन हम लोगों के समझने में कमी रहती है। तो कहते हैं ना कि सीता के लिए क्यों रोए, तो निज अज्ञान राम पर धरही, निज अज्ञान राम पर धरही। यथा ही चाक्षणा भ्रमता गृहादिकम, देखो कोई आदमी यूं खूब देर तक एक जमीन पर यूं घूमता रहे तो सब घूमता घूमता दिख रहे। बचपन में खेलते थे तब यही खेलते खेलते चारों तरफ घूमते फिर एकदम खड़े होते तो यूं दिखते यूं पृथ्वी ऊपर नीचे दिखती, पृथ्वी ऊपर नीचे थोड़ी होती, हमारी आंखें घूमी तो आंखों के घूमने का जब पृथ्वी पर यूं टकराहट हुई ना दोनों की दृष्टि यूं मिली पृथ्वी और वो आंख यूं मिली तो अपनी चंचलता इस पृथ्वी में दिखने लग गई। रेलगाड़ी के डिब्बे में बैठते हैं और उधर जिधर हमारी दृष्टि वो रेलगाड़ी यूं जाती है यूं रवाना हो गई है कि प्लेटफार्म से वो उधर रवाना हो गई, अरे हमारी गाड़ी रवाना हो गई कि नहीं भाई इधर देखो, इधर देखे तो हमारी गाड़ी खड़ी है, उधर देखे तो ऐसा लगता है हमारी गाड़ी रवाना हो गई। ऐसे ही जब हम शरीर आदि पर ही हरदम दृष्टि रखते हैं, इंद्रियों पर ही हमारी दृष्टि है, संसार के भोगों पर ही दृष्टि है, संसार के व्यक्तियों पर ही हमारी दृष्टि है, तब आदमी के मन में मोह पैदा होता है। सज्जनों हम लोगों को अपने 24 घंटे में कुछ समय ऐसा निकाल करके स्थिर भाव से इस विषय पर खूब विचार करना चाहिए, खूब विचार करना चाहिए कि ये पैसे का मुंह हमारे क्या काम आएगा, परिवार का मुंह मेरे क्या काम आएगा, ये इतनी बड़ी बड़ी उन्नति हम करते हैं ये क्या काम आएगा। इन बातों पर ईमानदारी से एकांत में मनुष्य को निष्पक्ष होकर के विचार करना चाहिए। और जब तक ये बातें हमारे व्यवहार में न आए ना, तब तक जो है इन बातों को केवल दिमाग से सोचने की बात नहीं रखनी चाहिए, व्यवहार में आनी चाहिए। सेठ जी जयदयाल जी गोविंदका जी यही कहते थे कि भाई व्यवहार में कितना गहरा है सत्संग। कोई कहते हैं सेठ जी आपकी बात हमको बहुत अच्छी लगी, सत्संग से बड़ा लाभ होता है, तो वो ये बोलते हैं कि तेरे व्यवहार में कितों का हो, व्यवहार में आवे भाई बात थारी देखी जावे, भाई व्यवहार में कितना गया, व्यवहार में तो वही चल रहा है हमारा, वही झूठ है, वही कपट है, वही लिप्सा है। और एकांत में हम सोचते हैं कि भाई बात तो देखो ये सब झूठी है, कुछ तो अच्छा ही है, कभी न कभी तो संस्कार पड़ेगा ही, लेकिन उसके ऊपर थोड़ी दृढ़ता आनी चाहिए। यही कहते हैं कि जिस प्रकार सूर्य प्रकाश स्वरूप है उसमें कहीं अंधकार नहीं आता, ऐसे ही अपना जो आत्म स्वरूप है उसमें कहीं माया का लेशांश भी नहीं है, एकदम निर्विकार है। केवल उस निर्विकार तत्व को समझने की जरूरत है। इसलिए परब्रह्म परमात्मा में अथवा आत्म स्वरूप में निमग्न रहो और उस आत्मा का आनंद ले हो। सज्जनों, जब आत्मा का आनंद हमें मिलने लगेगा तब ये बाहर का सुख हमारे लिए एकदम गौण हो जाएगा, कोई अर्थ नहीं रखेगा, कोई अर्थ नहीं रखेगा। बाहर का सुख हमको सुख दिखेगा ही नहीं। बाहर का सुख तभी तक सुख दिखाई दे रहा है जब तक हमको अंदर का सुख नहीं मिल रहा है। बस तस्मात् परानंदमये रघुत्तमे विज्ञान रूपे नहीं विद्यते तमः, अज्ञान साक्षिण्य अरविंद लोचने माया श्रयत्वा नहीं मोह कारणम। वो माया से लीला करते हैं, वो मोह नहीं किया करते। भगवान कहते हैं सुनो देखो, अब मैं तुमको बड़ी रहस्य की बात सुनाता हूं पार्वती, जिसमें सीता जी का, राम जी का और हनुमान जी का संवाद हुआ है। देखो ये उस समय की बात है कि जिस समय राम जी महाराज ने रावण को मार दिया, उसकी सारी सेना मर गई, बेटा वगैरह सब मर गए, परिवार के लोग सब मरमरा गए। उसके बाद भगवान वहां लंका से विजयी होकर अयोध्या पधारे और अयोध्या आने पर भगवान का खूब बड़ा जलसा निकला, खूब शोभा यात्रा हुई, बड़े बड़े नगारे वगैरह बजाए गए, खूब लोग जो है भगवान का स्वागत किए। फिर वशिष्ठ आदि महात्माओं ने एक बड़ा सुंदर सिंहासन उसके ऊपर उनको विराजमान करके राजगद्दी पर बैठा दिया और राजगद्दी पर बैठाने के बाद सबको अपने अपने स्थान पर विदा कर दिया। अब उस महल के अंदर राम जी महाराज विराजमान और जगत जननी सीता जी विराजमान और सामने हनुमान जी हाथ जोड़े हुए नम्र भाव से खड़े हुए। हनुमान जी के मन में बड़ा आनंद आ रहा था कि देखो मेरे माता पिता का कितना यश है, मेरे राम सीता जी मेरी माँ है, राम जी हमारे पिता हैं, इनका कैसा यश है देखो। ऐसे करके बड़े आनंद में इनका दोनों का दर्शन करके जो है हनुमान जी पुलकित हो रहे थे। राम जी महाराज ने हनुमान जी की मुद्रा देखी। आप देखो राम जी जब भी लक्ष्मी है, हनुमान जी जब भी रहेंगे राम जी के चरणों की तरफ हाथ जोड़े हुए ही मिलेंगे आप, राम जी के चरणों की तरफ। बड़े भक्ति से नम्र भाव से विराजमान थे। तब राम जी ने प्रसन्न होकर के सीता से कहा कि सीते ये देखो हनुमान हमारे कितना काम आया, तुम्हारे विरह में जब हम रो रहे थे तब इसी ने आकर के हमको सुनाया कि सीता जीवित है और वो लंका में रहती है, मेरा तो बड़ा उपकार किया। सीता जी ने कहा कि हाँ नाथ, जिस समय मैं लंका में थी मैं तो स्वयं मरने का उद्योग कर रही थी कि मर जाऊं तो बड़ी अच्छी, पर ये तो हनुमान थे जिन्होंने आकर मुझे राम कथा सुनाई और राम कथा सुना करके इन्होंने आकर के कहा कि राम जी का मैं दूत हूं तो मेरे प्राण बचाए और लक्ष्मण के भी देखो प्राण हनुमान ने बचाए, भरत को भी देखो आकर के हनुमान ने ही सूचना दी, कितना काम किया इसने, इसने तो अपना पूरा काम कर दिया। अब देखो इस हनुमान को सर्वथा तुम पात्र समझ करके वो ज्ञान बताओ जो ज्ञान तुम्हारे ही मुख से कहा हुआ अच्छा लगेगा, तुम ही इसको ज्ञान दो। देखो पिता और माता दो हैं, उनमें पुत्र को मां की जो शिक्षा होती है ना, क्योंकि पुत्र को जो है मां बहुत मीठी लगती है, अच्छी लगती है और मां की बात बहुत अच्छी लगती है, बहुत माँ का, जिस परिवार में माँ का बड़ा आदर होता है वो परिवार बड़ा सुखी रहता है। सभा में हम ज्यादा तो नहीं कह सकते हैं, परंतु इतना है कि जिस परिवार में माँ का बहुत सम्मान हमने देखा है उस परिवार की खुशहाली भी खूब देखी है। क्या माँ को जो है आदर दिया जाता है, ऊंचा बैठाना और जो है माँ से हर बात पूछ पूछ के करना, जिस बात को माँ जानती नहीं, माँ जानती नहीं, लेकिन बेटे लोग ऐसे आज्ञाकारी कि माँ ने कह दिया कि ये काम कर लो तो करना है, मना करे तो नहीं करना है। अब व्यापार की बात बूढ़ी माँ क्या जाने, अनपढ़ माँ क्या जाने, लेकिन माँ के मुख से निकल गया कि ये काम नहीं करना है तो नहीं करना है, चाहे कितने करोड़ों रुपए का नुकसान होता तो होता हो। ऐसा जो परिवार होता है उस परिवार के अंदर कितनी सुख शांति समृद्धि और सब प्रकार का आनंद रहता है। तो हनुमान जी महाराज को शिक्षा देने के लिए भगवान ने सीता जी से कहा कि देखो तुम जो है ऐसी बात कहो कि हनुमान को पात्र समझ के कहना, ब्रूही तत्वम हनुमते, वो तत्व की बात सुनाओ, क्योंकि हनुमान बिल्कुल निर्विकार है, निष्कलमश है, ये महापात्र है, ज्ञान का पात्र है और नित्यम भक्तिमान, ये तुम्हारे में और मेरे में पूरी भक्ति रखने वाला है, इसलिए तुम इसको खूब अच्छी तरह से खुल करके ज्ञान की बात सुनाओ। तो हनुमान जी महाराज बड़े राम जी की कृपा देखकर सीता जी की ओर देखने लगे, देव साहब को ज्ञान की बात सुनाओ, माँ आप सुनाओ। अब वो हनुमान जी की मुद्रा देखी, सीता जी से रहा नहीं गया, ऐसा स्नेह उमड़ा। माँ के सामने बच्चा कुछ लेने की इच्छा रखता हो और माँ के पास वो चीज है और उत्तम लड़का हो तो माँ दिए बिना रह ही नहीं सकती। सीता जी बड़ी खुश होकर के कहने लगी, देख बेटा तुम मुझे और जो है भगवान को कुछ जानते हो कि नहीं, नहीं जानते हो तो मैं सुनाऊं, सुनाऊं माँ, ये राम है ना, ये साक्षात परब्रह्म परमात्मा है, सच्चिदानंद है, अद्वय है और सब प्रकार की उपाधियों से रहित निर्विकार, न कुछ करता है न कुछ भोगता है। भोगता वो होता है जो करता होता है, और जो करता होता है वो भोगता होता ही है, करने वाला होगा वही भोगने वाला होगा, करने वाला नहीं होगा वो भोगने वाला नहीं होगा। तो राम जी न करता है न भोगता है, केवल निर्विकार सत्ता आनंद मात्र निर्विकार है। तो मां इन्होंने जन्म लिया है ना, इन्होंने धनुष तोड़ा है ना, इन्होंने आपसे विवाह किया है ना, इन्होंने दंडकारण्य में गमन किया है ना, इन्होंने अनेक अनेक राक्षसों को मारा है ना, वो क्या चीज है मां? अरे बेटा वही तो बता रही हूं, मूलम मां विद्धि मूल प्रकृति, मैं हूं ना वो प्रकृति हूं, मैं हूं प्रकृति और ये है परब्रह्म परमात्मा। तो क्रिया होती है सब प्रकृति में होती है, ब्रह्म के अंदर कोई क्रिया नहीं होती, बस केवल ब्रह्म का प्रकाश होता है, प्रकाश ब्रह्म का तो प्रकाश होता है, बाकी ब्रह्म के अंदर क्रिया नहीं होती है। तो इनका तो केवल सानिध्यता, सब काम मेरे से ही हुआ है, तत्सानिध्यात मया सृष्टम, सब मैंने किया है, सब मेरा ही काम है, चाहे अयोध्या के अंदर इनका जन्म हो, चाहे विश्वामित्र जी के साथ जाना हो, चाहे यज्ञ की रक्षा हो, चाहे अहिल्या के शाप की मुक्ति हो, चाहे धनुष तोड़ना हो, चाहे मेरे साथ विवाह हुआ हो, चाहे परशुराम जी का आना हो, चाहे अयोध्या नगरी के अंदर 12 बरस तक मेरे साथ रहना हो। देखो वाल्मीकि ये अध्यात्म रामायण के अनुसार 12 बरस के बाद ये राम जी को वनवास मिला था, 12 बरस के बाद सीता जी का साथ विवाह हुआ, 12 बरस तक राम जी रहे, उसके बाद विवाह हुआ। उस समय भगवान की उम्र 18-19 वर्ष की थी, राम जी महाराज छोटे अवस्था में ही विवाहित हो गए, सीता जी भी बहुत छोटी थी, विवाह हुआ तब छोटी सी थी सीता, और राम जी भी छोटे से ही थे, इसीलिए तो गोस्वामी जी महाराज ने पुष्पवाटिका के प्रसंग में जो दोनों का सौंदर्य का आकर्षण बताया है वो दैहिक सौंदर्य नहीं, शारीरिक सौंदर्य आकर्षण नहीं था, वो राम तत्व के प्रति आकर्षण था सीता जी का, राम तत्व के प्रति वो दिव्य आकर्षण है। वो वाणी से कैसे कहा जाए, तो वो सीता जी कहती है कि अयोध्या नगरे वासो मया द्वादश वार्षिक है, मेरे साथ 12 बरस तक रहना और फिर दंडकारण्य में जाना, विराद का वध करना, मारीच का वध करना, और मेरे ही द्वारा, मैंने ही मेरा हरण करवाया, रावण मुझे ले गया, फिर जटायु को मुक्ति होना, कबंध की मुक्ति होना, शबरी का पूजन होना, बाल और सुग्रीव के साथ मिलना और बाली का वध होना, और फिर मेरे लिए राम जी का विलाप करना, फिर विलाप करते हुए तुम्हारा वहां मेरे पास पहुंचना, और फिर जो है समुद्र के ऊपर पुल बनना, फिर लंका पर आक्रमण करना, रावण का वध होना, विभीषण को राज्य देना, पुष्पक विमान से यहाँ आना, यहाँ आकर के और यहाँ अभिषेक होना, ये सब मैं आचरित सब काम मेरे हैं, मैंने माया से दिखाए हैं। वास्तव में ये परब्रह्म परमात्मा कभी कुछ नहीं किए, न तो जन्म लिए, न कहीं गए, न आए, लेकिन लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे ये सब राम जी ही कर रहे हैं, लगता ऐसा ही है। जैसे सिनेमा के अंदर वो जो कैमरा है, उस कैमरे में जितनी रील चलती है, उस रील के अंदर क्या है, ऐसा लगता है कि जैसे ये साक्षात ही हो रहा है, साक्षात लीला हो रही है, और वो कैमरे में आई वो तो चित्र है एक, जैसे कोई नाचता है ऊपर नीचे हाथ करता है तो वो केवल चित्र ही होते हैं, उसमें इतनी द्रुत गति से चलते हैं कि ऐसा पता नहीं चलता कि चित्र, वो साक्षात दिखते हैं। ऐसे ही राम जी के ऊपर लोग पूरा माया का तत्व नहीं जानते, इसलिए सब कर्मों का आरोप राम जी पर करते हैं कि सीता के लिए रोए या अमुक के लिए ऐसा किया, सब किया तो मैंने, और राम जी पर सब करते हैं। रामो न गच्छति न तिष्ठति न अनुशोचति न आकांक्षते न त्यजति न करोति किंचित, न तो वो कभी जाते हैं, न आते हैं, न उठते हैं, न बैठते हैं, न शोक करते हैं, न ग्रहण करते हैं, न त्याग करते हैं, वो एकदम जैसे सूर्य का प्रकाश रहता है, वो इतना संसार में काम धंधा होता है, वो सूर्य के प्रकाश में ही हो रहा है, लेकिन सूर्य का उससे कोई लेना देना नहीं है, सूर्य को पाप पुण्य थोड़ा ही लगेगा, सूर्य को कोई पाप पुण्य नहीं लगता, और जितना पाप हो रहा है, शिकारी है वो शिकार करता है, और वेदज्ञ ब्राह्मण है वो सूर्य के प्रकाश में वेद का पाठ करता है, तो सूर्य को पाप पुण्य लगना चाहिए, सूर्य को नहीं लगता, सूर्य तो केवल प्रकाश करता है, और उसमें चाहे जो काम करते रहो। ऐसे ही आनंद मूर्ति भगवान है, वे परिणामहीन है, वे किसी परिणाम के अंदर परिणित नहीं होते, जैसे दूध है वो दही में बदल गया, जैसे पानी है वो काहे में और कोई चीज में डाल दो तो वो उसके रूप वाला हो गया, ऐसे भगवान कभी भी परिणाम में विकृत नहीं होते हैं। ये मैंने तुमको मेरा तत्व समझाया है। अब आओ हनुमान जी महाराज राम जी की तरफ देख लेंगे, महाराज आप हैं ये सगुण निर्गुण साकार निराकार, सुनते तो आपको है, माया तो कभी निर्गुण सगुण साकार निराकार विविध रूप धारण करती हुई भी ऐसा लगता है कि सगुण साकार निराकार तो आपके रूप है, माया के थोड़ा ही है, ये क्या बात है महाराज। तो राम जी कहते हैं देख हनुमान, सीता ने तो अपनी प्रकृति की बात बताई, अब मैं मेरी बात विशेषता से बताता हूं, मेरा भी तत्व तुम बड़े प्रेम से सुनो, कैसे समझो मेरे तत्व को, जैसे एक आकाश है वो तीन प्रकार से दिखाई देता है। आकाश माने अवकाश, अवकाश माने खाली जगह, खाली जगह है माने खाली जगह को आकाश बोलते हैं। तो अब जैसे कोई तालाब भरा हुआ है, वो तालाब के अंदर दिखता तो पानी है लेकिन आकाश उसमें पहले है, कैसा पानी है कि नहीं, पानी के अंदर भी आकाश है, पानी के अंदर आकाश है और एक आकाश जो आसमान जो नीला नीला दिखता है उसका भी इसमें प्रकाश पड़ता है। तो तालाब के अंदर का आकाश और फिर उसमें जल का आकाश और एक प्रतिबिंबित आकाश, तीन आकाश की भ्रांति होती है। सीधा सीधा लोग क्या कहेंगे कि देखो ये आकाश की, देखो ये आकाश की चमक, ये रही ये आकाश की चमक। तो चमक वाला आकाश है ये तो झूठा है। इसलिए झूठा है कि पानी की चमक से आकाश को वो ग्रहण करता हुआ दिखता है, वास्तव में वो ऊपर वाला आकाश पानी में नहीं है, उसमें केवल चमक दिखती है, आभास दिखता है। आभास होता है वो सत्य नहीं होता, वो झूठा होता है, आभास झूठा होता है। ऐसे ही इस माया के अंदर एक आभास चिदाभास होता है, माने बुद्धि से जुड़ा हुआ जो चेतन है उसमें जो चेतन अंश को अलग करना वो तो सही है, लेकिन बुद्धि के अंदर प्रतिबिंबित चैतन्य है। प्रतिबिंबित चैतन्य माने ये मैं हूं, देह मैं हूं, शरीर मैं हूं, ऐसा जो अपने अंदर मैं पड़े को लेकर जो आभास है, ये आभास है, ये मिथ्या है। तो जैसे अपनी आत्मा का आभास देहादि के अंदर परिलक्षित होता है और उस परिलक्षित देहादि ही अपनी आत्मा दिखाई देती है, वो झूठी है, इसी प्रकार से ये राम ने ऐसा कर दिया, राम सीता के लिए रोए, राम सीता के लिए ऐसा किए, राम ने उसको छिप करके मारा, ये सब बातें मेरे पर आरोप करनी बिल्कुल झूठी है। और जब गुरु के द्वारा तत्वमसि वो परब्रह्म परमात्मा तुम हो, जैसे महाकाश ही महाकाश है, आकाश में टुकड़ा नहीं होता। देखो एक 5-6 वर्ष पहले यहां ये बिल्कुल नहीं था, ये मकान नहीं था, आकाश था। अब ये मकान बन गया तो इसको हम मठाकाश कहते हैं, मठ बोलते हैं मकान को, तो ये मठाकाश हो गया। ये मकान था तब ये एक आकाश था महाकाश, और मकान बन गया तो ये मठाकाश हो गया। तो मठाकाश और महाकाश दिखने में दो दिखते हैं पर वास्तव में दो नहीं है, एक महाकाश ही है। अब ये जिस दिन मकान नहीं रहेगा उस दिन आकाश रहेगा। ऐसे ही तत् त्वम असि वो परमात्मा तुम हो, तो जब मैं और मेरेपन का भाव मिट जाएगा तब एक परमात्मा रह जाएगा। ये जो बात जानी जाती है, ये बात असली जानी जाती है हनुमान, इसी को ही ऐक्य ज्ञान बोलते हैं। आत्मा और परमात्मा में लेश मात्र भी भिन्नता न देखे, ये ऐक्य ज्ञान है, ऐक्य ज्ञान। और इस ऐक्य ज्ञान के बिना मेरी भक्ति नहीं होती, और मेरी भक्ति किए बिना चाहे कितने ही शास्त्र पढ़ लो, चाहे कितने ही तीर्थ आदि में चले जाओ, किसी प्रकार से उनको कोई मोक्ष होने वाला नहीं है। ये मेरा हृदय है, हृदय इसी को राम हृदय बोलते हैं। ये मेरा हृदय का ज्ञान मैंने तुमको कहा है, सीता ने अपना हृदय का ज्ञान तुमको कहा है, ये हृदय है। ये कभी भी किसी आदमी को जो मेरी भक्ति नहीं करता उसको नहीं कहना चाहिए, चाहे साक्षात इंद्री क्यों न आ जाए। इंद्रादपि, इंद्र से भी बढ़कर कोई राज्य मिलता हो तो भी हर किसी के सामने ये बात कहने की नहीं होती है। महादेव जी कहते हैं कि हनुमान जी ने ये ज्ञान धारण किया और हे पार्वती, उस ज्ञान को धारण करके हनुमान जी इतने आनंदित हुए, क्यों हो, आज हमको जाने क्या क्या मिल गया, क्या क्या चीज मिल गई। देखो पार्वती, मैंने तुमको वो ज्ञान सुनाया, तुमने कहा ना कि सनातन तत्व बताओ, सनातन तत्व, वो सनातन तत्व मैंने तुमको सुनाया है। और तुमने पूछा कि राम किस प्रकार से ऐसे जो है ये इधर सीता के लिए विलाप करते हैं तो उधर वशिष्ठ जी से ज्ञान लेते हैं, इस विषय में तुम्हारा संदेह था वो भी मैंने तुम्हारा दूर कर दिया। तो हम तुमको जो बताने जा रहे थे कि राम हृदय है, ये कितना भी कोई अति भ्रष्ट है, अति पापी, अति दुराचारी और स्तेयी ब्रह्मग्न, ब्रह्म को मारने वाला, ब्राह्मण को मारने वाला, माता पिता से द्वेष करने वाला कैसा भी रहा हो, लेकिन राम हृदय का पाठ करने पर वो भी शुद्ध हो जाता है। पार्वती जी ने कहा कि धन्यास्मि महाराज, मैं तो बड़ी धन्य हो गई, बड़ी आपने मेरे पर कृपा की, अब जो है आप मेरे संदेह को ये तो दूर कर लिए, अब मेरे मन में आती है कि अब राम जी की कथा सुनी जाए, क्योंकि राम जी की कथा सुनते हैं तब ये इतना ज्ञान सुनने के बाद जब कथा सुनते हैं तब ये कथा के अंदर कभी राम जी के मन, राम जी के प्रति द्वेष नहीं होता कि राम जी ऐसे कैसे कर दिए, यहां राम जी ने ऐसे कैसे कर दिया, ऐसे राम जी के प्रति हमारे मन में जो है संदेह का भाव नहीं होता। तो अब आप हमको राम जी की विस्तार से कथा सुनाओ। सीता के मुख से तो अभी हनुमान जी ने सुनाया तो वो संक्षेप में सुनाया, आप राम जी की कथा विस्तार से सुनाओ, क्योंकि आप भाव से सुनाओगे तो उस विस्तार के साथ में आप हमको कथा सुनाओ। तो महादेव जी कहते हैं कि देखो ये तो बहुत गुप्त से गुप्ततम बात है, कथा कोई ऐसी वैसी थोड़ी ही होती है, कथा तो बहुत गुप्त होती है, हर किसी को कथा सुनाने से हर कोई व्यक्ति उसका दुरुपयोग कर सकता है। जैसे बिजली का काम हर आदमी थोड़ी कर सकता है, हर आदमी चाहे कि साहब हम फ्यूज डाल दें, हम ऐसा कर दें, अरे पता तो है नहीं भाई, कहीं इधर उधर हाथ लगा दोगे तो मुश्किल हो जाएगी। हर चीजें आ जाए, छोटा बच्चा है, गैस सिलेंडर है, उसको यूं खोल देवे कहीं चूल्हे को और वहीं पर बैठे कोई दिया सड़ाई यूं लगा दे तो लेने के देने पड़ जाए। हर आदमी हर चीज को जानता नहीं है। तुमने इतनी बात सुन ली, तुम कथा का खूब अच्छा उपयोग करने वाली हो, अतः संसार के कल्याण के लिए मैं तुम्हें अब राम जी की कथा अध्यात्म के अनुसार सुनाऊंगा, अध्यात्म के अनुसार, जिससे मनुष्य अज्ञान को तो दूर कर ही लेगा और वो अपने जहां तक जब तक ये जीवन रहेगा तब तक वो बड़े शांति के साथ इसके अंदर निमग्न रहेगा, रामायण में डूबा रहेगा। देखो राम जी को यहां अवतार लेने की जरूरत क्या पड़ी कि पहले राम जी से पहले रावण आया, उस रावण ने बहुत अत्याचार किए, तब पृथ्वी के ऊपर उसका भार बढ़ता चला गया। पृथ्वी के ऊपर पुण्य का भार नहीं होता है, क्योंकि पुण्य होते हैं उनका उनसे तो पृथ्वी धारित होती है, वो तो पृथ्वी के आधार होते हैं, और पाप होते हैं वो पृथ्वी को डगमगा देते रहते हैं। तो पाप से जब ये पृथ्वी डगमगाने लगी तब ये गौर भूतवा गाय होकर के देवताओं के पास गई। देवताओं ने कहा हमारे बस की बात नहीं है, तो चलो ऋषि मुनियों के पास। तो ऋषि मुनियों के पास गई, ऋषि मुनियों ने कहा कि हमारे ज्ञान से भी पाप दूर नहीं होगा, चलो ब्रह्मा जी के पास, वो सत्यलोक में विराजमान है। तो वहां गए तो ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई मैं तो सृष्टि को बना तो सकता हूं लेकिन पाप पुण्य का फल देने का काम तो मेरे पास है नहीं, तो अपने भी चलते भगवान विष्णु के पास। तो ब्रह्मा जी सबको लेकर विष्णु भगवान के लिए क्षीर सागर पर गए और वहां जाकर के भगवान की बड़ी स्तुति गाई। पुराणों में जो स्तुतियां थी, वेदों में जो स्तुतियां थी, सब ब्रह्मा जी के अंदर पैदा हुई, देवताओं के हृदय में पैदा हुई, सब बड़े मस्ती से और आर्त होकर सच्चे भाव से भगवान से प्रार्थना करने लगे। तब उस समय भगवान वहां हजारों हजारों सूर्यों का सा दिव्य प्रकाश लिए हुए उनके बीच में प्रकट हो गए। अब वो प्रकट हुए तो इतने भगवान आकर्षक, इतना तेज उनको जो है देवता लोग देख नहीं सके। देखो ये इतनी तेज लाइटें हैं, इनकी तरफ आप 10 मिनट भी देखें तो आपके आंखों में कितना हो जाए, उसके बाद तो अंधेरा छा जाएगा, क्योंकि हमारी नेत्र शक्ति से कितना ही तेज ये है लाइट, और इसी कोई बार लगा दो कोई असर नहीं होगा। सूर्य का इतना तेज, भगवान तो हजारों लाखों करोड़ों करोड़ों सूर्य से भी ज्यादा प्रकाशमान, उनके तेज को कोई सहन कर ही नहीं सके। सामने यूं बंद कर ली, आंखें बंद कर ली, दूरदर्शन अकृतात्म नाम। अब भगवान के किरीट केयूर हाया और ये सब जो है उनके हार वगैरह जगमगाने लगे, तब जो है भगवान के सामने, अच्छा भगवान आए गरुड़ पर बैठ करके, तो ब्रह्मा जी उनकी स्तुति करने लगे, वाह महाराज वाह वाह, हे प्रभु मैं हृदय से आपको नमस्कार करता हूं और मुमुक्षु जन अपने प्राणों से अपने शरीर से अपने इंद्रियों से सर्वतो भावेन आपकी शरण में रहते हैं। हे प्रभु आपकी माया से हम लोगों की आपने रचना की है, आपकी कृपा शक्ति से ही हम लोग पलते पोसते हैं। देखो जब भी भोजन करें तो उस समय भगवान को विशेष याद करना चाहिए कि भगवान ने इस अन्न जल के अंदर अपनी पोषक शक्ति रखी है, उसके द्वारा हमारा पालन होता है। अरे भगवान कोई थोड़ी बहुत हमारे कर्मों के फल से कोई विपरीत परिस्थिति पैदा कर देते तो हम भगवान को कोसने लगते हैं, ये क्या किया, छोटी अवस्था में ऐसा कर दिया, देखो उसके बाल बच्चे बेचारे कैसे छोटी अवस्था में है, उसका उसकी माँ मर गई, उसका पिता मर गया, उसके ये हो गया, ये क्या किया। ये देखो अपने मन के प्रतिकूल थोड़ा सा भी होता है तो हम भगवान को जाने कितना कितना कहना चालू कर देते हैं, और भगवान हमारे लिए कितना काम करते हैं, हवा के अंदर जिलाने की शक्ति दिए, जल के अंदर जो है तृप्ति करने की शक्ति दिए, अन्न के अंदर भूख दूर करने की शक्ति दिए, कितना भगवान ने हमारा पालन किया उसका कोई एहसान ही नहीं है। इतने हम लोग कृतज्ञ हो गए, जब भी जल पिए तो भगवान को याद करना है, हे भगवान कैसी दया है, इस जल के अंदर आप हमको क्या जो है ये जीने की शक्ति देते हो, हे भगवान कैसी दया करते हो आप अन्न के अंदर हमारे शरीर के पोषक तत्व इसके अंदर देते हो, ऐसे भगवान को तो याद करना चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि आप महाराज माया के द्वारा संसार को रच करके और सबका पालन करके और काल शक्ति से सबका संहार करके बड़ा उपकार करते हो, इतना सब करते हुए भी आप अपने आनंदानुभव से कभी भी नीचे नहीं आते हैं। हम लोग थोड़ा सा कोई काम करते हैं तो घमंड में आ जाते हैं, घमंड में आते ही अपना आनंद लुप्त हो जाता है भाई, अपने आप का जो आनंद है वो लुप्त हो जाता है। लेकिन आपके अंदर ऐसी बात नहीं है, आपका आनंद अनुभव वैसा ही रहता है। विद्या अध्ययन कर ले, दान पुण्य कर ले, तब भी अंतःकरण इतना शुद्ध नहीं होता जितना आपकी भक्ति के अंदर डूबे रहने से अंतःकरण पवित्र होता है। ऋषि मुनियों ने इसीलिए सब दोषों के संहार के लिए आपके चरणों का ही आश्रय लिया है। हम ब्रह्मा वगैरह जितने भी स्वार्थ सिद्धि के लिए आप ही के पास आते हैं और आप कृपा करके अपरोक्षानुभूति कराते हैं। अपरोक्षानुभूति देखो, पुण्य करोगे तुमको स्वर्ग मिलेगा, ये क्या है, ये परोक्ष अनुभूति, ये परोक्ष की बात है, ये परोक्ष की बात है। लेकिन भोजन कर लो तत्काल भूख दूर हो जाएगी, ये अपरोक्षानुभूति है, सामने एकदम प्रत्यक्ष है। जल पिएंगे, जल पीते ही शांति मिलती है, क्योंकि ये प्रत्यक्ष बात है। ऐसे ही ज्ञानी महापुरुषों ने आपके चरण कमलों का पूजन करके अप्रत्यक्ष उन्होंने अपरोक्ष अनुभव किया है, प्रत्यक्ष अनुभव किया है। हे प्रभु हम तो आपसे यही चाहते हैं कि संसार के अंदर आपकी भक्ति का प्रचार प्रसार होता रहे। संसार के अंदर जो आदमी रात दिन जल रहे हैं उनकी एकमात्र दवा केवल आपकी भक्ति है और कोई दवा नहीं है। भगवान कहने लगे, ब्रह्मा जी आप सब लोग क्यों इकट्ठे होकर आए, आप मुझसे क्या चाहते हो? तो कहे महाराज ये पौलस त्रिकुल नंदन रावण इस समय बहुत अत्याचार करता है, सारी त्रिलोकी के अंदर इसने हाइत्राई मचा रखी है, सारा विश्व उससे दुखी हो गया है, इसलिए हम आपके सामने ये प्रार्थना करने आए हैं कि आप मनुष्य होकर के मनुष्य रूप में अवतार लेकर के इस रावण का वध कीजिए। क्यों? मनुष्य रूप से ही क्यों? इसलिए कि इसने सबसे अभय मांग लिया, एक मनुष्य से अभय नहीं मांगा है, तपस्या से मनुष्य से क्या है, मनुष्य मेरा क्या करेंगे, इसलिए मनुष्य से इसका मरना होगा। और इसने मनुष्य इसकी परवाह नहीं की, देवताओं से न मरूं, असुरों से न मरूं, उनसे नहीं मरूं, सबसे अमरता प्राप्त की, मनुष्य तो मेरा बिगाड़ी क्या सकते हैं, इसलिए आप मनुष्य बनकर के आइए महाराज। भगवान कहते हैं आपकी बात ठीक है, कश्यप जी हमारी बहुत दिनों से तपस्या करते हैं और उन्होंने पुत्र भाव से ही हमारे आराधना की है, तो ये कश्यप जी इस समय दशरथ जी बने हुए हैं और इनकी जो प्रधान रानी अदिति है वो अभी कौशल्या बनी हुई आई है, तो मैं चार रूपों में आकर के यहाँ अवतार लूंगा और मेरी जो योग माया है वो जनक के यहाँ सीता के रूप में अवतार लेगी, तुम्हारा सारा काम पूरा हो जाएगा, आप लोग सब निश्चिंत हो जाओ। इतना कहकर के भगवान अदृश्य हो गए। भगवान के अदृश्य हो जाने पर ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा कि देखो अब रघुकुल के अंदर भगवान विष्णु अवतार लेने वाले हैं, तो आप लोगों का भी कर्तव्य बनता है कि आप लोग भी बंदरों के शरीरों में चले जाओ, अपने अपने अंश से चले जाओ, अपना रूप तो यहाँ तो वही रखो लेकिन अपना जो तेज है, अपना जो देवत्व है वो बंदरों के अंदर आने दीजिए और फिर तुम जो है भगवान विष्णु की पूरी सहायता कीजिए। इति देवान समाधिश्य, ऐसे देवताओं को उन्होंने आदेश दिया और आदेश देने के बाद ब्रह्मा जी अपने अपने स्थान पर चले गए और देवता लोग भी वहां से पहले, देखो भगवान से पहले देवता आए हो, देवता लोग इस खुशी से कि भाई अब भगवान के दर्शन करने का मौका मिलेगा, जितने देवता थे वो अपनी अपनी शक्तियों से असंख्य देव असंख्य बंदरों में चले गए और वे ऐसे बंदर हुए, ऐसे बंदर हुए जो सामान्य बंदर नहीं थे और इतनी संख्या में हुए, इतनी संख्या में हुए कि संख्याएं भी जिनके पीछे छोटी पड़ गई। कितनी बढ़िया बात तुलसीदास जी महाराज लिखी है, पदम 18 जूथप बंदर, बताओ 18 पद्म तो सेनापति है भारत के अंदर, अपने तीन सेनापति माने जाते हैं, थल सेनापति अलग, जल सेनापति अलग और वायु सेनापति अलग, तीन तीन के ऊपर प्रधान सेनापति वो राष्ट्रपति माना जाता है, तो मूलतः तो एक ही सेनापति हुआ लेकिन राम जी की सेना में 18 तो 18 पद्म तो सेनापति, 18 पद्म इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब खरब 10 खरब नील 10 नील पद्म और 18 पद्म, 18 पद्म तो सेनापति है वहां। देखो इसमें राम अध्यात्म रामायण में आएगा कि जिस समय राम जी महाराज का पुष्पक विमान यूं लंका से आ रहा था उस समय बंदरों की सेना लंका की तरफ यूं जा रही थी, अभी भी सेना यूं जा रही थी, तो राम जी महाराज ने कहा बंदरों कहां जाते हो, कि लंका जा रहे हैं महाराज, ये क्यों, क्यों रावण के साथ युद्ध करना है, अरे इतनी सेना आती गई हो, सुग्रीव सब कह रहे भैया सब जाओ काम हो गया हमारा, इतनी सेना, कितनी सेना थी वो, इतनी बड़ी सेना, और वो भी क्या के पर्वत वृक्ष योधिन है, बड़े बड़े पर्वतों को गेंद के समान उठा उठा के खेले, वृक्षों से लड़ाई करने वाले, प्रतीक्षमाणा भगवंत ईश्वरम, वो प्रतीक्षा कर रहे थे कब भगवान आए, कब भगवान को वनवास मिले, कब भगवान की सीता का हरण हो और कब भगवान घूमते घूमते हमारे उधर आए और कब हम सीता को प्राप्त करने के लंका में जाएं। अरे एक छोटी सी बात है कि सीता के लिए क्यों विलाप किए, सीता के लिए विलाप था कि देवताओं के लिए विलाप था, राम जी का विलाप तो इन देव पुत्रों के लिए था, देवताओं के, अरे देवताओं तुमसे कैसे मिलूं, तुमसे कैसे मिलूं, राम जी तो सीता जी का तो बहाना बनाए, वास्तव में तो इनको अपने भक्तों से मिलना था, सीता जी का हरण हुआ, यदि रोते नहीं तो सीता जी को ढूंढते नहीं, ढूंढते नहीं तो बंदरों से मिलते नहीं, और बंदरों से मिलना था इनको। तो सीता जी के लिए विलाप नहीं है, भक्तों के लिए विलाप है। देवास्त सर्वे हरि रूप धारिण स्थिता सहायार्थ मितस्ततो हरि महाबल पर्वत वृक्ष योधिन प्रतीक्षमाणा भगवंत ईश्वरम। हम के मन में प्रतीक्षा होने, कब भगवान आए, कब भगवान आए, कब भगवान आए। इधर तो ये बात होती रही, अब उधर अयोध्या में क्या होता है वो 40 मिनट के मध्यम विश्राम के बाद बताएंगे। राम 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 राम
राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम
राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम
राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम
राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम
राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम
राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम
राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम
राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम
राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम
राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम
राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम
राम राम राम
राम राम राम राम
राम सियावर राम
चंद्र की
मुकुटवंशी वाले।